पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
आप सुन रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार। आइए सुनते हैं कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री रेशम लाल प्रधान से उनका व्याख्यान।
आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेशम लाल प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करा था, जिसमें हमने देखा था कि पर्सनल कंप्यूटर में वैसे तो मुख्य रूप से तीन प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था। आज हम मुख्य रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कंप्यूटर की रचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेसिंग होती है, तदुपरांत डेटा इन्फॉर्मेशन का रूप धारण करती है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर्स के सभी भागों जैसे कि मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। इसके नियंत्रण में प्रोग्राम और डेटा मेमोरीज में स्टोर होती हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है या प्रिंटर के द्वारा कागज पर प्रिंट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे हम ALU के नाम से जानते हैं, मैन मेमोरी यूनिट्स एवं कंट्रोल यूनिट्स। ये मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU के नाम से जाना जाता है, यह बेसिकली ऑपरेशनल पार्ट होता है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं, वे एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में संपन्न होती हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो ALU यूनिट है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यह मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एरिथमेटिक एवं लॉजिकल। एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एरिथमेटिक सेक्शन का उपयोग होता है, एवं चूँकि कंप्यूटर, जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में बात करा था, यह बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 जिसे मशीनी भाषा कहा जाता है, इस पर कार्य करता है। तो जितनी भी सूचनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं, प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर में, वो बाइनरी भाषा के रूप में होती हैं। तो इस रूप में निर्देशों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज होता है। तो जो गणितीय संक्रमक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी एरिथमेटिक सेक्शन में संपन्न होती हैं। और जितने लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, यह मुख्य रूप से तीन तरीके से पाया जाता है, एंड, और एवं नॉट, और इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस फॉर्म होती हैं, जैसे नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर में CPU में संपन्न होती हैं। तो किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस, जो भी डेटा प्रोसेस करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो एरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट में संपन्न होती है। इसके बाद होता है मैन मेमोरी यूनिट। मैन मेमोरी यूनिट वह यूनिट होता है जहाँ पर हमारा डेटा एग्जीक्यूट होने के लिए या रन होने के लिए स्टोर होता है। आगे हम मेमोरी डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस मुख्य रूप से दो तरीके से होंगे, जिन्हें हम प्राइमरी स्टोरेज एवं सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानेंगे। दो स्टोरेज डिवाइसेस में जो प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, ये मुख्य रूप से एप्लीकेशंस को, डेटा को, निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, एंड सेकेंडरी स्टोरेज केवल इन डेटा और जितनी भी सूचनाएँ होती हैं, इन्हें स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, ये हमारे CPU में यूज होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज के प्रकार के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, बात करेंगे। हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से दो तरीके से पाया जाता है, रैम एवं रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है एवं रोम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो जो रैम होता है इसी को मेन मेमोरी यूनिट कहा जाता है। यह सीपीयू पर उपस्थित होता है, सीपीयू में पाया जाता है। जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या किसी पर्टिकुलर डेटा को हम कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो यह रैम में जाता है, मेन मेमोरी यूनिट में जाता है, सीपीयू में। और उसके पश्चात यह निर्देश हमारे एएलयू सेक्शन में, सीपीयू के एएलयू सेक्शन में प्रोसेस होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। तो यह मेन मेमोरी यूनिट होता है। आगे हम मेमोरी यूनिट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वहाँ हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से डेटा प्राइमरी स्टोरेज एवं सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट होता है वह हमारा प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी यूनिट होता है। जो अगला कंपोनेंट है सीपीयू का वह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह भाग कंप्यूटर की इंटरनल ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी एवं ALU के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित भी करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में से प्राप्त करता है, एक्सेस करता है। निर्देशों को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग हेतु डेटा मेमोरी में कहाँ उपस्थित है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट मेमोरी में कहाँ स्टोर होना है, इन सभी निर्देशों के विद्युत संकेत सिस्टम बस की कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों में, विभिन्न कंपोनेंट्स में संचालित होते हैं। तो यह काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। जितनी भी प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म होनी है उन सारे ऑपरेशंस का मॉनिटरिंग कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मैन मेमोरी यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट। इनके अलावा भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो सीपीयू में की रोल प्ले करते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हम देखते हैं रजिस्टर के बारे में। तो आइए जानते हैं रजिस्टर क्या होता है, किसे कहा जाता है। कंप्यूटर निर्देश सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचनाओं के सेटिस्फैक्ट्री रूप के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का सीपीयू मेमोरी यूनिट का प्रयोग करता है। इस मेमोरी यूनिट को रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर मेन मेमोरी के भाग नहीं होते हैं एवं इनमें सूचनाएँ अस्थायी रूप से स्टोर होती रहती हैं। किसी भी रजिस्टर का आकार उसकी बिट स्टोर करने की क्षमता के बराबर होता है। इसका साइज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एवं 64 बिट के रूप में प्रोसेसर में भी उपलब्ध होते हैं। रजिस्टर जितने अधिक बिट की होगी उतनी ही अधिक तेजी से कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न होगा, क्योंकि सीपीयू में प्रोसेसिंग के समय जो डेटा होते हैं वे रजिस्टर में स्टोर होते हैं। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यह कंप्यूटर निर्देश की एक्टिव मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम सीपीयू में प्रोसेस करने जा रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं उनकी एक्टिव मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, यह रजिस्टर मेमोरी से रीड किए गए या लिखे गए किसी भी शब्द के कंटेंट्स को स्टोर करता है। जो भी डेटा हम करेंटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उनके कंटेंट्स को मेमोरी बफर रजिस्टर स्टोर करता है। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, यह रजिस्टर एग्जीक्यूट होने वाले अगले निर्देश का एड्रेस स्टोर करता है। कौन सा निर्देश नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को हम प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर करते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यह रजिस्टर एग्जीक्यूट होते हुए डेटा को उसके मिडिल रिजल्ट एवं लास्ट रिजल्ट को भी स्टोर करता है। प्रायः ये रजिस्टर सूचनाओं के एग्जीक्यूशन के समय प्रयोग होता है। क्या रिजल्ट आना है एवं इसका लास्ट रिजल्ट क्या होना है, इस प्रकार के सूचनाओं को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इंक्शन रजिस्टर, यह रजिस्टर एग्जीक्यूट होने वाली सूचना को स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, यह रजिस्टर विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मध्य सूचनाओं के ट्रांसमिशन के लिए आवागमन के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रजिस्टर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न रजिस्टर उपयोग में लाए जाते हैं। अगली कंपोनेंट की हम बात करते हैं सीपीयू में, बस। तो आइए जानते हैं बस क्या होता है। बस के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में भी बात करा था, पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स में। बस बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ये पाथ को रिप्रेजेंट करता है विभिन्न रिसोर्सेज के बीच में, विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। सीपीयू के साथ जो भी डेटा का आवागमन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो बस के माध्यम से संपन्न होता है। बस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के मध्य एक पाथ का कार्य करती है। कंप्यूटर में दो मुख्य बसें होती हैं, पहली आंतरिक अथवा सिस्टम बस तथा दूसरी बाहरी अथवा एक्सपेंशन बस होती है। सिस्टम बस मदरबोर्ड पर स्थित रहती है तथा सीपीयू को मदरबोर्ड पर स्थित अन्य डिवाइसेस से जोड़ती है। एक्सपेंशन बस का कार्य सीपीयू को एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मोडेम, प्रिंटर इत्यादि से जोड़ना होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो सीपीयू में यूज होता है। कितना इंस्ट्रक्शन सीपीयू में एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। प्रत्येक प्रोसेसर कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर प्राप्त करना या फिर दो संख्याओं के बीच तुलना करके बड़ी संख्या प्राप्त करने जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इन ऑपरेशंस में प्रत्येक का अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन की सूची को ही इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जितने भी निर्देश हम सीपीयू को दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए, ये सभी इंस्ट्रक्शंस के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन की सूची को, निर्देशों की सूची को इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है। यही कारण है कि प्रोग्राम को एक विशेष प्रोसेसर को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट मुख्य रूप से दो तरीके से परिभाषित किए जाते हैं, सिस्क एवं रिस्क। CISC इसका फुल फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें प्रोसेसिंग सर्किटरी होता है जिसमें कई विशिष्ट उद्देश्य सर्किट जुड़े होते हैं जो उच्च गति के साथ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि चिप में ढेर सारे प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं, सिस्क डिजाइनर प्रोग्राम के काम को आसान बना देता है। सिस्क चिप्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तथा कॉस्टली होते हैं एवं वे बहुत ज़्यादा विद्युत धारा कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की स्पीड इनमें ज़्यादा होती है। वही हम रिस्क की अगर बात करें, जिन्हें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहा जाता है, ये रिलेटिवली कम कॉस्टली होते हैं, ये कम विद्युत धारा खपत करते हैं। बट स्पीड की अगर हम बात करें तो सिस्क के कंपेयर में इनकी स्पीड कम होती है। तो ये हमने सीपीयू के बारे में देखा, इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और इन सीपीयू में बेसिकली हमने बात किया कि सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो बेसिकली इसमें प्रोसेसर यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान समय में उपयोग में लाए जाते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा जो आजकल मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर उपयोग में लाए जाते हैं। वे है इंटेल प्रोसेसर। इंटेल कॉरपोरेशन ने दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इंटेल कॉरपोरेशन ने ही सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इसके द्वारा बनाए जा रहे प्रोसेसर्स इंटेल प्रोसेसर कहे जाते हैं। इंटेल प्रोसेसर का प्रयोग अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर्स में होता है। सेलरॉन, पेंटियम, इंटेनियम, इनकी डिफरेंट फैमिलीज ऑफ प्रोसेसर्स हैं जो माइक्रो कंप्यूटर्स में उपयोग में लाई जाती हैं। AMD प्रोसेसर। AMD प्रोसेसर पूर्ण रूप एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। आज इंटेल के बाद सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला प्रोसेसर AMD प्रोसेसर ही है। AMD प्रोसेसर के बाद फैमिली मेम्बर्स में ड्यूरॉन, एथेलॉन, ऑप्टन नाम से ये डिफरेंट प्रोसेसर्स इसके उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा मोटोरोला का प्रोसेसर भी वर्तमान समय में मार्केट में उपलब्ध है। मोटोरोला प्रोसेसर मोटोरोला द्वारा बनाई जाने वाली प्रोसेसर है। इन्हें फ्री स्केल प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। प्रायः सभी एप्पल कंप्यूटरों में इसी प्रोसेसर का प्रयोग होता है। तो अभी हमने CPU के बारे में जाना, अब हम अन्य दो मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो है इनपुट डिवाइसेस एवं आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की हम बात करें, जिस प्रकार से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और जिनके द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर्स के भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस की तरह फंक्शन करते हैं और कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट लेते हैं। कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के CPU को निर्देशित करती हैं। इनपुट डिवाइसेस कई रूप में उपलब्ध होती हैं, जो जिसका डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है, माउस की सहायता से कमांड को एक बार या दो बार क्लिक कर एग्जीक्यूट किया जाता है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल माउस के समान ही होते हैं। स्कैनर इमेजेस को CPU में इनपुट करते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस उपलब्ध हैं जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग में लाई जाते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो इन्हें चार कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है। टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस, वे इनपुट डिवाइसेस जिसमें हम टाइपिंग के माध्यम से सूचनाओं को प्रविष्ट करते हैं कंप्यूटर में, वह टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस के नाम से जाने जाते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हम पॉइंट करके सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं, एंटर करते हैं, वे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका माउस, जॉयस्टिक, ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस, जब हम डॉक्यूमेंट्स को या इमेजेस को स्कैन करते हैं और डेटा को इनपुट लेते हैं कंप्यूटर में, तो वो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जब भी हम डेटा को ऑडियो के फॉर्म में या विजुअल फॉर्मेट में इनपुट करते हैं, CPU में प्रविष्ट करते हैं, तो वे ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस के बारे में। टाइपिंग इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की वे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को टाइप करके इनपुट करने के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड एवं टर्मिनल्स। कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग है तथा यह प्राथमिक इनपुट उपकरण होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसमें कई प्रकार के कीज अवेलेबल होते हैं। इन कीज़ को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, मॉडिफायर कीज, कर्सर मूवमेंट्स की। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ आप जैसे कीबोर्ड को देखेंगे तो उसमें 0 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिक डिजिट्स रहते हैं, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, एवं प्लस माइनस डिवीजन, इस तरीके से कुछ स्पेशल सिंबल्स या विशेष चिन्ह भी रहते हैं। ये सभी अल्फा न्यूमेरिक कीज़ की श्रेणी में आती हैं। न्यूमेरिक कीपैड, जनरली डेस्कटॉप में या पर्सनल कंप्यूटर में जो कीबोर्ड हम अलग से यूज़ करते हैं उसमें न्यूमेरिक कीपैड पाया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कीज़ होती हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिक डिजिट्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और कुछ विशेष कीज़ जैसे होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, एंटर, डिलीट इत्यादि होते हैं। विशेष की का संचालन नॉर्म लॉक की को ऑन करके या ऑफ करके किया जा सकता है। फंक्शन कीज होते हैं कीबोर्ड में। आप देखेंगे कीबोर्ड के टॉप लेयर में F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन कीज पाए जाते हैं। हर फंक्शन की का अपना महत्व होता है। जैसे सर्च करने के लिए हम F2 की का यूज़ करते हैं, ओपन एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम F4 का यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को रन करना है तो F9 की का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हर फंक्शन की का अपना अपना उपयोग होता है। कर्सर मूवमेंट कीज होते हैं, 4 कीज होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। आप उनके माध्यम से कर्सर को स्क्रीन में कहीं भी ले जा सकते हैं और मूव करा सकते हैं। कीबोर्ड के प्रकार की अगर हम बात करें तो यह वायर्ड एवं वायरलेस कीबोर्ड के रूप में पाया जाता है। वायर्ड की जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर से जुड़े होते हैं USB केबल के थ्रू, वायरलेस कीबोर्ड भी अवेलेबल हैं आज के समय में, जिसमें वायरलेस सेंसर्स के थ्रू कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है एवं हमारा ऑपरेशन संपन्न होता है, डेटा हम इनपुट करा सकते हैं। एक तीसरी प्रकार की कीबोर्ड होती है जिसे ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो यूजर को टाइपिंग करने में दूसरे पारंपरिक कीबोर्ड की अपेक्षा अधिक आराम देते हैं। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सामान्य कीबोर्ड से अलग होता है, और ये हमारे फिंगर्स को आराम देते हैं। ऐसे कीबोर्ड अर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहे जाते हैं। ये टाइपिंग श्रेणी का इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो माउस आता है। माउस और कीबोर्ड आप सभी जानते हैं हमारे कंप्यूटर का अभिन्न अंग होता है। माउस की सहायता से हम कर्सर को स्क्रीन में मूव करा सकते हैं। किसी भी सेक्शन में हमको जाना है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो हम डबल क्लिक करके माउस की सहायता से वो कार्य संपन्न कर सकते हैं। माउस के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ड्रैगिंग करना है, स्क्रॉलिंग करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं माउस। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर या किसी फाइल के ऊपर आप कर्सर को रखे हैं और राइट क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि आपको क्या कार्य उसके ऊपर संपन्न करना है। ड्रैगिंग एंड स्क्रॉलिंग। ड्रैगिंग क्या होता है? जब हम कर्सर को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के ऊपर रखते हैं और माउस के बटन को प्रेस करके उसको होल्ड करके बिना छोड़े हम किसी दूसरे लोकेशन में जब कर्सर को मूव कराते हैं तो वह ऑब्जेक्ट या वह एप्लीकेशन दूसरे लोकेशन में मूव हो जाता है, और जैसे ही हम बटन को रिलीज़ करेंगे वह सिंबल, वह ऑब्जेक्ट, वह एप्लीकेशन दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो जाता है, यह ड्रैगिंग कहलाता है। माउस के बटन को होल्ड करते हैं ऑब्जेक्ट पर रख कर और दूसरे सेक्शन में मूव करा लेते हैं और वहाँ पर उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो हमारा जो भी एप्लीकेशन या ऑब्जेक्ट रहेगा हमारी स्क्रीन में डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट हो जाता है, यह ड्रैगिंग कहलाता है। स्क्रॉलिंग क्या होता है? माउस में एक बबल रहता है ऊपर साइड में, आप देखे होंगे, तो उसको आप मूव कराएंगे तो वो फ्रंट साइड या लेफ्ट डाउन साइड में वो मूव होता है। आप आगे की ओर मूव कराएंगे तो आपका स्क्रीन जो है ऊपर की ओर जाएगा, और जब आप उसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपका स्क्रीन नीचे की ओर जाएगा। इसका उपयोग जनरली तब करते हैं जब हम किसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं उसमें मल्टीपल पेजेस हो, तो स्क्रॉलिंग की सहायता से हम फ्रंट पेजेस, अप पेजेस या डाउन पेजेस को रीड आउट कर सकते हैं। तो ये माउस के डिफरेंट फंक्शंस थे जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। माउस के प्रकार की अगर हम बात करें तो यह तीन प्रकार से पाया जाता है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एवं कॉर्डलेस माउस। मैकेनिकल माउस का उपयोग आजकल कम हो चुका है। अगर हम 5-10 साल पहले जाएं तो मैकेनिकल माउस का उपयोग बहुतायत में होता था। मैकेनिकल माउस में जो माउस होता है उसमें नीचे साइड में एक बबल लगा हुआ रहता है, जब हम उसे सरफेस में मूव कराते हैं तो वो सरफेस को सेंस करता है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा कर्सर स्क्रीन में मूव होता है। सेकेंड कैटेगरी है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में प्रकाश का पुंज फ्लैश होता है नीचे साइड में, वो बबल नहीं रहता है, मैकेनिकल डिवाइस में जैसे गोला रहता है ऑप्टिकल माउस में वैसा नहीं होता है। प्रकाश का पुंज फ्लैश होता है वो एक सेंसर की तरह फंक्शन करता है, और जैसे सरफेस में हम ऑप्टिकल माउस को मूव कराते हैं वो जो प्रकाश का पुंज रहेगा या लाइट रहेगा वो सरफेस को सेंस करेगा और जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव कराएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा कर्सर स्क्रीन में मूव होगा, यह ऑप्टिकल माउस का फंक्शन होता है। और एक जो तीसरा कैटेगरी है वह कॉर्डलेस माउस, वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस में हमारा USB वायर नहीं लगा हुआ होता है, ये सेंसर के थ्रू फंक्शन करता है एवं हम कहीं भी माउस को रख कर हमारे स्क्रीन में कर्सर को मूव करा सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जॉयस्टिक एवं ट्रैक बॉल का उपयोग होता है, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जॉयस्टिक एवं ट्रैक बॉल वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए जनरली उपयोग में लाए जाते हैं। एक समय में इनका प्रयोग बहुत आयत में होता था, आजकल इनका प्रयोग कम होने लगा है, फिर भी कुछ विशेष वीडियो गेम्स के साथ आपको जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल देखने को मिल जाएगा। जॉयस्टिक में बेसिकली एक छोटा सा हैंडल होता है जिसे हम अपने हैंड से लेफ्ट राइट अप डाउन हम मूव करा के ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन में मूव करा सकते हैं। ट्रैक बॉल में एक बबल होता है, माउस की तरह दिखाई देता है बट एक बबल होता है जिसमें हम अपने पाम को रख कर उस बबल को जिस डायरेक्शन में मूव कराएंगे अपना कर्सर स्क्रीन में उसी डायरेक्शन में मूव होता है। इसके अलावा टच स्क्रीन होता है, लाइट पेन होता है, ये सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात होता है स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, तो ये बेसिकली दो तरीके से स्कैन होता है। जब भी हम एक डॉक्यूमेंट को या किसी ऑब्जेक्ट को हम स्कैन करते हैं तो हम उसे या तो इमेज एक पिक्चर के फॉर्मेट में स्कैन करना चाहेंगे या फिर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्कैन करना चाहेंगे। आप एक पिक्चर के फॉर्म में स्कैन करेंगे तो वो JPG के फॉर्म में स्टोर होता है। आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं तो PDF के फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होगा। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जनरली अगर आपका डॉक्यूमेंट पर्सनल है, प्राइवेट है, आप उसको सिक्योर रखना चाहते हैं तो PDF फॉर्म में उसको हमें स्कैन करना चाहिए। ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और इसको जनरली सामान्य यूजर एडिट नहीं कर पाते हैं, तो ये इसकी विशेषता होती है। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को कम साइज़ में स्कैन करना है तो पिक्चर फॉर्मेट में स्कैन करिए, तो JPG, JPEG इस तरीके के फॉर्मेट में स्कैन होगा। JPG फॉर्मेट्स में स्कैन करने से हमें परहेज करना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से पिक्चर्स का एडिटिंग किया जा सकता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइसेस जो स्कैनिंग श्रेणी में आती हैं, इसमें है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर जिसे OCR के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे OMR मशीन के नाम से जाना जाता है। आप लोग OMR शीट में एग्ज़ाम देते होंगे, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते होंगे तो आप OMR शीट में क्या होता है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, आप पर्टिकुलर ऑप्शन को बबल को डार्क करते हैं, तो इन पेजेस को मैनुअली रीड नहीं किया जाता है, इन्हें OMR मशीन के थ्रू रीड किया जाता है। तो इसके लिए जो स्कैनर यूज होता है उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। इसके अलावा होता है MICR जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। तो मैग्नेटिक कोटिंग के अनुसार अगर कोई निर्देश या कोई सूचना स्टोर है और उसे रीड करना है तो इस प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे बैंकिंग के चेक्स होते हैं या डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं जो मैग्नेटिक कोटेड होते हैं। हमारे ATM के बैक साइड में आप देखेंगे ब्लैक कलर का एक जो स्ट्रिप होता है वो मैग्नेटिक कोटेड होता है, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस जो स्टोर होते हैं वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो उनको रीड करने के लिए हम MICR मशीन का उपयोग करते हैं। बारकोड रीडर का भी स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी हम शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं, आप देखे होंगे जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसका बिलिंग मैनुअली नहीं होता है, वो एक मशीन रखे रहते हैं, वो बारकोड रीडर कहलाता है। उसमें लेजर लाइट फ्लैश होता है, वो बारकोड को सेंस करते हैं प्रोडक्ट के और आप प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनके कंप्यूटर में एंट्री हो जाता है। इस तरीके से विद इन फ्यू मिनट्स आपका बिलिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये बारकोड रीडर इसके लिए यूज किया जाता है। ये सभी स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस थे। अब जो अगली श्रेणी का इनपुट डिवाइस है वो ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। इसके लिए हम वॉइस रिकॉग्नाइजर का यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, डिजिटल कैमरा का उपयोग करते हैं। माइक्रोफोन आप सभी लोग यूज़ करते होंगे मोबाइल फ़ोन्स के साथ, तो ये ऑडियो के रूप में डेटा को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन्स का उपयोग करते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस का भी उपयोग होता है एवं डिजिटल कैमरा का उपयोग विजुअल इफ़ेक्ट्स को, विजुअल डेटा को एज ए इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट प्रकार के इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करा। मैं समझता हूँ आप सभी को इसके बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता होगी एवं अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे के व्याख्यान में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आयुर्वेद वनौषधियों का नूतन योग प्रबल हो, ज्ञान कर्म की नई दृष्टि हो, गति की राह विमल हो, गति की राह विमल हो।